नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि स्थानीय स्तर पर विकास की गाड़ी पटरी से उतरी हुई सी लगती है। योजनाएं तो बनती हैं, पैसा भी शायद आता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार जस की तस रहती है।
हाँ, ये बहुत आम समस्या है।
और इसका एक बड़ा कारण है तालमेल की कमी। मतलब अलग अलग विभाग, पंचायत, समुदाय सब अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे होते हैं।
बिल्कुल।
तो आज हम एक ऐसे मॉडल की गहराई में उतर रहे हैं जो इसी समस्या का समाधान करने का दावा करता है। नाम है ग्राम पंचायत समन्वय समिति, यानी GPCC।
हाँ,
हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो खासकर झारखंड में इसके लागू होने के अनुभवों पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या।
बिल्कुल। देखिए, ये जो बिखराव वाली समस्या आपने बताई ना, वो बहुत आम है और यहीं पर जीपीसीसी की भूमिका, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है।
स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से ग्राम पंचायत मतलब GP लेवल पर बनाया गया एक संस्थाबत मंच है। एक ऐसी जगह जहां विकास के सभी किरदार, सभी स्टेकहोल्डर्स एक साथ आ सकें। सभी किरदार
जी,
मतलब कौन कौन? क्या ये सिर्फ सरकारी बाबुओं की मीटिंग होती है?
या कुछ और भी?
नहीं, यही तो उसकी खासियत है। इसमें वो सरकारी विभागों के स्थानीय प्रतिनिधि तो होते ही हैं।
जैसे मान लीजिए कृषि विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के लोग।
हाँ,
हाँ
लेकिन साथ ही समुदाय आधारित संगठन यानी CBOs जैसे स्वयं सहायता समूह SHG जिन्हें हम कहते हैं,
जी।
उनके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
अच्छा, SHG के महिलाएं भी?
हाँ बिल्कुल। फिर सबसे महत्वपूर्ण पंचायत के जो चुने हुए सदस्य हैं PRI सदस्य और नागरिक समाज संगठन यानी CSOs या NGOs जो उस इलाके में काम कर रहे हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं।
अच्छा, तो ये तो एक तरह की महापंचायत जैसी हो गई जहां गांव के विकास से जुड़े लगभग सभी लोग एक मेज पर बैठते हैं।
हाँ कह सकते हैं।
लेकिन इसका मकसद क्या है? सिर्फ मिलना जुलना या कुछ ठोस काम भी होता है? मतलब कहीं सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं?
नहीं, इसका मकसद बहुत ठोस है। स्रोत के अनुसार सबसे पहला और बड़ा काम है ग्राम पंचायत को मजबूत करना। हाँ, पंचायत को मजबूत करना। कैसे?
देखिए, अक्सर पंचायतें योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी तो होती हैं कागज पर उनके पास न तो पूरी जानकारी होती है, न ही दूसरे विभागों का वैसा सहयोग मिल पाता है जैसा मिलना चाहिए।
हाँ ये तो है।
GPC इसी कमी को पूरा करती है। ये पंचायत को योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य धुरी, मतलब सेंटर पॉइंट बनाती है।
यानी पंचायत सिर्फ नाम की मुखिया नहीं लेती बल्कि असली ड्राइवर सीट पर आ जाती है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। आप सोचिए, जब कृषि विभाग का अधिकारी, स्कूल का हेडमास्टर, आंगनबाड़ी सेविका, SHG की दीदियां और सरपंच सब एक साथ बैठकर बात करेंगे,
हाँ
तो गांव की असली जरूरतों के हिसाब से योजना बनाना और उसे लागू करना कितना आसान और प्रभावी हो जाएगा।
बात तो सही है।
ये सिर्फ समन्वय या कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रिया है, और इससे लोगों को लगता है कि ये हमारी योजना है, जिससे फिर जवाबदेही भी बढ़ती है।
ये स्थानीय स्वामित्व वाली बात तो बहुत अहम है।
बिल्कुल।
लेकिन अक्सर ऐसी बैठकों में या सरकारी कामों में पारदर्शिता की कमी खलती है। क्या GPCC इसमें कुछ मदद करती है?
निश्चित रूप से स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। देखिए, GPCC एक खुला मंच है जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, योजनाओं की प्रगति पर सवाल पूछ सकता है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे साझा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ बजट आवंटन, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बचा है और आगे क्या करना है, ये सब जानकारी खुलकर साझा की जाती है।
अच्छा।
हाँ, जब सबको पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो गड़बड़ी की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है।
तो मतलब सब कुछ खुला रहता है।
हाँ
पैसा कहाँ गया ये सबको पता होता है।
हाँ लक्ष्य तो यही है, पारदर्शिता बढ़ती है इससे।
श्रुत में एक और दिलचस्प बात कही गई है, समेकित संसाधन लिफाफा बनाने में GPCC की भूमिका। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है।
हाँ,
इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ?
कंसोलिडेटेड रिसोर्स एनवेलप। हाँ, ये वाकई में बहुत काम की चीज है। देखिए, होता क्या है कि ग्राम पंचायत को अलग अलग योजनाओं और विभागों से पैसा मिलता है ना?
हाँ, अलग अलग मदों से।
पर अक्सर पंचायत को खुद ही ठीक ठीक पता नहीं होता कि कुल मिलाकर उनके पास कितना संसाधन उपलब्ध है या होने वाला है। समेकित संसाधन लिफाफा का मतलब है कि GPCC की बैठकों में विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमानित धनराशि का एक कुल जोड़, एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है।
अच्छा, यानी पंचायत को एक ही जगह दिख जाता है कि उनके पास विकास कामों के लिए कुल कितना फंड आ सकता है, चाहे वो मनरेगा से हो, स्वास्थ्य मिशन से हो, या 15वें वित्त आयोग से, या किसी और योजना से।
बिल्कुल, एकदम सही। और जब आपके सामने पूरी तस्वीर होती है, मतलब पूरा रिसोर्स पूल दिखता है, तो आप बेहतर योजना बना सकते हैं।
हाँ, ये तो है।
आप देख सकते हैं कि कहाँ किस योजना के पैसे को मिलाकर, जिसे स्रोत में अभिसरण या कन्वर्जेंस कहा गया है, किसी बड़ी जरूरत को पूरा किया जा सकता है।
कोई उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, मान लीजिए स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाना है। अब इसके लिए पैसा शिक्षा विभाग से भी आ सकता है, स्वच्छ भारत मिशन से भी मिल सकता है, और पंचायत के अपने फंड से भी कुछ लग सकता है। जीपीसी में ये तय हो सकता है कि इन सबको मिलाकर काम जल्दी और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। स्रोत यही बताते हैं कि ये प्रक्रिया पंचायत की लोकतांत्रिक जवाबदेही को सच में मजबूत करती है, उसे सिर्फ सरकारी आदेश मानने वाली एजेंसी से ऊपर उठाकर एक असली योजनाकार और प्रबंधक बनाती है।
ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन असली चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने में होती होगी, और ये पक्का करने में कि चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब सरपंच और पंच, इसे वाकई अपनाएं, सिर्फ एक और मीटिंग समझकर खाना पूर्ति न कर दें। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या इसे सफल बनाने के लिए कोई खास तरीके अपनाए गए?
हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, क्योंकि सिर्फ ढांचा बना देना काफी नहीं होता। इसे सफल बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई गईं, और इसमें सबसे पहली थी सभी हितधारकों का उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं।
उन्मुखीकरण यानी सबको समझाना कि ये जीपीसीसी आखिर है क्या, बला, और क्यों जरूरी है।
सही समझे आप। बाकायदा संरचित सत्र, मतलब प्रॉपर सेशंस आयोजित किए गए। इनमें पंचायत सदस्यों, सरपंचों, एसएचजी की दीदियों, सरकारी कर्मचारियों और एनजीओस के लोगों को बैठाकर समझाया गया कि भाई जीपीसीसी का मकसद क्या है, ये कैसे काम करेगी, और इसमें उनकी अपनी भूमिका, उनका अपना रोल क्या होगा।
अच्छा।
स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जब लोगों को अपनी भूमिका और उसका महत्व पता चलता है, तो वो ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।
सिर्फ समझाने से तो काम नहीं चलता होगा, क्या इसे संस्थागत रूप देने के लिए भी कुछ किया गया? मतलब इसे एक नियमित प्रक्रिया, एक रेगुलर प्रैक्टिस कैसे बनाया गया?
बहुत जरूरी सवाल है ये। इसके लिए राज्य स्तर पर पैरवी की गई, एडवोकेसी, कोशिश ये की गई कि राज्य सरकार की ओर से औपचारिक निर्देश या सर्कुलर जारी हों, जो सभी ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से जीपीसीसी बैठकें आयोजित करने के लिए कहें या प्रोत्साहित करें।
अच्छा, मतलब ऊपर से आदेश आया।
हाँ, जब ऊपर से निर्देश आते हैं तो नीचे अमल करना थोड़ा आसान हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये आधिकारिक पत्र जीपीसीसी को एक स्थायी व्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित हुए।
और गांव के स्तर पर लोगों तक बात कैसे पहुंचती थी? क्या सरपंच सिर्फ मौखिक रूप से बता देते थे कि मीटिंग है?
नहीं, इसे और औपचारिक और थोड़ा सीरियस बनाया गया। स्रोत बताते हैं कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी मुखिया या सरपंच, उनकी तरफ से बाकायदा चिट्ठियां भेजी जाती थी पंचायत सदस्यों को, सीबीओ को, और आशा, आंगनवाड़ी जैसी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को भी। और इन चिट्ठियों में सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि बैठक का एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है और क्या अपेक्षित नतीजे हैं, ये सब साफ साफ लिखा होता था।
अच्छा।
इससे एक तरह का भरोसा बनता है और चुने हुए प्रतिनिधियों में अपनत्व की भावना, जिसे ओनरशिप कहते हैं, वो पैदा होती है कि हाँ भाई, ये हमारी बैठक है, हमें इसे सफल बनाना है।
यानी ऊपर से निर्देश और नीचे से क्षमता निर्माण दोनों साथ साथ चले।
बिल्कुल, ये टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का एक तरह का मिश्रण था। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि लगातार संवाद और क्षमता निर्माण जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दी और काम खत्म हो गया।
तो स्रोत में कुछ इम्प्लीमेंटेशन हाइलाइट्स यानी कार्यान्वयन की मुख्य बातों का भी जिक्र है। इसमें क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काफी जोर दिया गया लगता है।
हाँ, क्षमता निर्माण को इसकी सफलता की कुंजी माना गया है। स्रोत कई तरह के प्रयासों का उल्लेख करते हैं।
जैसे कि?
जैसे पहला, पंचायत सदस्यों को मॉडल ग्राम पंचायतों का दौरा कराया गया, एक्सपोजर विजिट्स।
अच्छा, जहां ये अच्छा काम कर रहा है वहां ले जाकर दिखाया।
हाँ, जहां जीपीसी या इसी तरह के मॉडल सफल रहे हैं वहां ले जाकर दिखाया गया कि देखो कैसे काम होता है। इससे उन्हें प्रेरणा मिली और वे सीख पाए कि अपने यहाँ क्या बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, पंचायत सदस्यों के लिए कई ट्रेनिंग सत्र रखे गए। इनमें उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सब पे फोकस किया गया। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और नेतृत्व क्षमता निखरी।
ये जरूरी था।
तीसरा, ब्लॉक स्तर के प्रशासन को भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि सभी मुखियाओं और पंचायत सचिवों को जीपीसीसी प्रक्रियाओं की व्यवस्थित ट्रेनिंग मिले। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अहम था।
हाँ, ब्लॉक लेवल तो महत्वपूर्ण कड़ी है।
और चौथा, ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आधिकारिक पत्र जारी करके सभी पंचायतों में जीपीसीसी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करवाना अनिवार्य करें। एक तरह से मैंडेटरी बना दिया गया।
अच्छा, तो मतलब ट्रेनिंग सिर्फ पंचायत सदस्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम को इसके लिए तैयार किया गया, ब्लॉक अधिकारियों को भी।
सही कहा आपने, और ये एक बार की बात नहीं थी। श्रोत बताते हैं कि लगातार रिफ्रेशर ट्रेनिंग और बार बार एक्सपोजर विजिट होते रहे, ताकि जो सीखा है वो भूले नहीं और नई बातें भी पता चलती रहें। इसके अलावा समुदाय आधारित संगठनों, खासकर एसएचजीज को भी अलग से समझाया गया, उनको सेंसिटाइज किया गया कि इस मंच का उद्देश्य क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें उनकी भागीदारी की क्या भूमिका है।
और बैठकों के आयोजन और उनमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ खास इंतजाम थे। आजकल तो जानकारी समय पर मिलना ही एक बड़ी चुनौती होती है।
हाँ, इसके लिए भी श्रोत में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पहला तो ये कि बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले सभी संबंधित लोगों को औपचारिक पत्र के जरिए दी जानी चाहिए।
7 दिन पहले, ठीक है।
और सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एजेंडा भी बताना जरूरी है, ताकि लोग तैयारी के साथ आएं, सोच कर आएं कि क्या बात करनी है।
ये अच्छी बात है, 7 दिन पहले सूचना, ये तो सरकारी कामकाज के लिहाज से काफी अच्छा है।
हाँ, और इससे भी आगे जाकर स्रोत एक और दिलचस्प चीज बताते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल।
व्हाट्सएप, अच्छा।
हाँ, मुखिया को निर्देश दिया गया कि वे प्रमुख हितधारकों, मतलब सरकारी अधिकारी, सीबीओ प्रतिनिधि वगैरह का एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। और इस ग्रुप का इस्तेमाल योजनाओं की जानकारी, सरकारी सूचनाएं, बैठकों का कार्यक्रम, मीटिंग के मिनट्स, ये सब साझा करने के लिए सक्रिय रूप से किया जाए।
अरे वाह, ये तो आज के जमाने का तरीका हुआ। इससे तो सूचना का प्रवाह वाकई तेज और आसान हो गया होगा।
बिल्कुल, रियल टाइम कम्युनिकेशन। और बैठकों में जो चर्चा होती थी, जो फैसले लिए जाते थे, उनका क्या? क्या उसे कहीं दर्ज भी किया जाता था, या बस बातें हवा में रह जाती थी?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि हर जीपीसीसी बैठक की कार्यवाही और उसमें लिए गए फैसलों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य था। मीटिंग मिनट्स तैयार करना।
अच्छा, मिनट्स बनते थे।
हाँ, इससे पता रहता है कि पिछली बार क्या तय हुआ था, किस काम की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, और अगली बैठक में उसकी प्रगति की समीक्षा की जा सके। ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, बिना रिकॉर्ड के तो फॉलोअप मुश्किल हो जाता है।
सही कहा।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, ये जो स्रोत सामग्री है झारखंड के अनुभवों पर आधारित, ये जीपीसीसी मॉडल के बारे में क्या मुख्य निष्कर्ष निकालती है, इसका निचोड़ क्या है? व्हाट आर द की टेकअवेज?
देखिए, स्रोत कई मुख्य निष्कर्षों को रेखांकित करते हैं। पहला, ये मॉडल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है।
कैसे?
नागरिक साक्षरता बढ़ाकर, मतलब लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं के बारे में जानकारी देकर, और पंचायत की जो समितियां होती हैं उनमें स्वयं सहायता समूहों, एसएचजीज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके। जब महिलाएं, खासकर एसएचजी की महिलाएं इन मंचों पर आती हैं, अपनी बात रखती हैं, तो उनकी आवाज को बल मिलता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा?
दूसरा, ये जीपीसीसी जैसे औपचारिक अभिसरण प्लेटफॉर्मों की स्थापना और मजबूती पर जोर देता है। कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सिर्फ बैठकें नहीं हैं, ये समन्वित शासन और बेहतर सेवा वितरण के इंजन हैं। तीसरा, यह समुदाय आधारित निगरानी प्रणालियों को लागू करने की बात करता है, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े, मतलब लोग खुद देखें कि काम कैसा हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं।
अच्छा, लोग खुद निगरानी करें।
हाँ, ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर है।
लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी कुछ है?
हाँ, चौथा निष्कर्ष इसी से जुड़ा है। यह मॉडल लक्षित प्रशिक्षण, खासकर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, लीडरशिप डेवलपमेंट और महिला सभाओं को संस्थागत बनाने के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। पांचवा, ये भागीदारी वाले तरीकों, पार्टिसिपेटरी टूल्स का उपयोग करके अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने और उन्हें विकास योजनाओं में प्राथमिकता देने पर बल देता है। मतलब जो सबसे जरूरतमंद है उन तक लाभ पहले पहुंचे।
ठीक है, और सेवा वितरण और क्षमता निर्माण के बारे में भी कुछ खास बातें?
बिल्कुल, छठा निष्कर्ष है नागरिक सेवा केंद्र स्थापित करके और योजना बनाने में मदद करने वाले सूत्रधारों, फैसिलिटेटर्स और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाकर सेवा वितरण को बेहतर बनाना। और सातवां और शायद सबसे अहम, ये निरंतर क्षमता निर्माण में निवेश करने और पंचायतों, पीआरआईज, एसएचजीज और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देता है ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। ये कोई एक बार का काम नहीं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी ये सब मिलकर स्थानीय शासन को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में ज्यादा सहभागी, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बनाने की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है। ये सिर्फ एक मीटिंग का नाम नहीं है बल्कि शासन करने के एक नए, ज्यादा समावेशी तरीके का खाका है।
आपने बिल्कुल सही सार निकाला इसका। संक्षेप में कहें तो जीपीसी एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्थानीय स्तर पर बिखरे हुए किरदारों को एक साथ लाता है। उन्हें मिलकर योजना बनाने, समस्याओं को सुलझाने और हाँ, एक दूसरे के काम की निगरानी करने का मंच देता है। और लक्ष्य एक ही है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और विकास ऐसा हो जो वाकई गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करे, ना कि सिर्फ ऊपर से थोपा गया लगे।
तो आज हमने जीपीसीसी मॉडल को समझने की कोशिश की, एक ऐसा ढांचा जो स्थानीय विकास के लिए जरूरी तालमेल और सहयोग को संभव बनाता है, जैसा कि झारखंड के अनुभवों पर आधारित इस शोध सामग्री में हमें देखने को मिला। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाकर स्थानीय लोकतंत्र को वाकई मजबूत किया जा सकता है।
हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है। देखिए, स्रोत व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और व्हाट्सएप जैसे संचार साधनों पर जोर देते हैं।
हाँ।
तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में तकनीक शायद इससे भी आगे जाकर स्थानीय शासन के इन मंचों में पारदर्शिता और वास्तविक समय की भागीदारी को और कैसे बढ़ा सकती है। क्या हम ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते जहां गांव का कोई भी नागरिक अपने फोन से ही जीपीसी की चर्चाओं और फैसलों को न सिर्फ देख सके बल्कि शायद उनमें किसी तरह हिस्सा भी ले सके।
ये तो बहुत आगे की सोच है पर संभव है। या फिर एक और बात जो स्रोत में आई, संसाधनों को मिलाने, अभिसरण और 15वें वित्त आयोग से परे भी संसाधन जुटाने की।
हाँ।
तो पंचायतें सरकारी योजनाओं के अलावा अपने संसाधन बढ़ाने के लिए और कौन से नए या रचनात्मक तरीके खोज सकती हैं? क्या स्थानीय स्तर पर कुछ शुल्क लगाकर या निजी क्षेत्र के साथ कोई साझेदारी करके? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।
जरूर, इसी विचार के साथ हम आज के विस्तृत चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।